गिनती अध्याय 35। जब हम अध्याय 35 पढ़ते हैं तब वहां शरण नगरों के विषय बताया गया है जो उन्हें स्थापित करने थे। पद 2, इसराइलियों को आज्ञा दे कि तुम अपने अपने निज भाग की भूमि में से लेवियों को रहने के लिए नगर देना और नगरों के चारों ओर की चराइयां भी उनको देना। नगर तो उनके रहने के लिए और चराइयां उनके गाय बैल और भेड़ बकरी आदि उनके सब पशुओं के लिए होगी। गिनती 35 दूसरा और तीसरा पद। शहर तो उनके रहने के लिए थे और शहर से अलग 1000 हाथ उनकी खेती के लिए और 2000 हाथ उनके पशुओं के लिए। ये उनके शहर की सीमा होगी। लेवियों को 48 शहर दिए जाने थे। उनको और उनके परिवारों को भूमि का भाग नहीं दिया जाना था। लेवियों को विरासत नहीं मिली थी क्योंकि परमेश्वर ने कहा, मैं उनकी विरासत हूं। उनको सबसे उत्तम भाग नहीं मिला। सभी को संपत्ति मिली परंतु लेवियों को विरासत में प्रभु मिला। इसलिए उनको 48 शहर रहने के लिए दिए गए और शहर की सीमा पर पशुओं को चरने और खेती करने के लिए भूमि दी गई। इन 48 शहरों में से 6 शहरों को शरण शहर करके अभिषिक्त किया गया। 3 यर्दन नदी की दोनों ओर इस तरह कि आप कहीं भी रहे, आधे दिन की दौड़ से शरण नगर दूर न रहे। इन शहरों का उद्देश्य था कि अपनी संस्कृति का ध्यान रखे जो गहराई से उनके दिलों में बोई गई थी। सबसे कठिन चीज जिसे हम स्वतंत्र नहीं हो पाते हैं वो है रीतियां। कुछ संस्कृति की चीजें इस गहराई तक हमारे विचारों में जड़ पकड़कर गई होती है कि उनको उखाड़ फेंकना सबसे अधिक कठिन होता है। मैं आपको एक विपरीत उदाहरण देता हूं। बड़े दिन की छुट्टियां मूर्ति पूजकों की है। इसको वास्तव में यीशु के जन्म से कोई संबंध नहीं है। वे यीशु के आने से पूर्व ही बड़ा दिन मनाया जाता था। इसको वे दूसरे नाम से बुलाते थे। रोमी इसे सेतुरनालिया कहते थे, परंतु इसका उद्गम नू के बाद निम्रोद के समय से पाया जाता है। पेड़ों का सजाया जाना आदि मूल में बड़े दिन की रीतियां नहीं है, फिर भी कहने के लिए हम इसे मूर्ति पूजक छुट्टी को मानने से इनकार नहीं करते हैं। आपका मतलब है कि आप बड़ा दिन नहीं मनाओगे? ये गहराई से हमारी संस्कृति में रचा बसा है कि हम उसे पकड़े रहते हैं, जबकि हम जानते हैं कि ये अधिकाधिक मूर्ति पूजा होता जा रहा है। कितने लोग बड़े दिन पर यीशु मसीह का दिल से आदर करते हैं? यदि ये उसका जन्मदिन है, जबकि नहीं है, परंतु यदि ये उसका जन्मदिन है तो कितने लोग सच में मसीह का आदर करते हैं? जब भी हम उत्सव मनाना आरंभ करते हैं, पुलिस विभाग को अतिरिक्त कार्य करना पड़ता है। जितने भी अतिरिक्त पुलिस दल है उन्हें भी बुलाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि अब सड़कों पर अधिक नशा करने वाले लोग मिलेंगे। लोग बड़े दिन की पार्टी से घर लौटेंगे। हम लोग मसीह की पैदाइशी मना रहे थे। हाँ हाँ हाँ, तो भी हम उसे अपने आप को अलग नहीं करते, क्योंकि ये रीति हमारी संस्कृति का हिस्सा बन गई है, एक रिवाज जिसको उखाड़ना बड़ा कठिन है। इसलिए परमेश्वर ने उसकी संस्कृति को उखाड़कर फेंकने की जगह उनको ही उखाड़ फेंकने को कहा। जबकि वो ऐसा करना नहीं चाहता था। इन लोगों के लिए उनकी संस्कृति के बदले मृत्यु थी, ये उनकी संस्कृति का भाग था। यदि आपके परिवार का कोई मनुष्य किसी के द्वारा मार डाला गया हो तो आपको उसे मारने का गौरव हासिल करना है। आपका मृत संबंधी के प्रति उत्तरदायित्व था, परिवार की इज्जत का सवाल था, आपको उसका पीछा करते रहना जब तक कि आप उसको पाकर मार ना डाले। उस परिवार की कोई मर्यादा नहीं लौट सकती थी जब तक कि उसका लहू न बहाया जाए। यदि आप घर के सबसे बड़े बेटे हो तो आप खून का बदला लेने वाले ठहरते हो, और ये आपका कर्तव्य है कि आप अपने भाई, बहन, माँ या बाप के खून का बदला लो। यही बदले की मृत्यु की भावना उनकी संस्कृति में गहराई तक बैठी हुई थी। कई बार मृत्यु एकदम दुर्घटनापूर्ण होती है, जहां कोई चाल, कोई क्रोध, कोई योजना नहीं होती, परंतु बदले की भावना इतनी गहरी थी कि चाहे मृत्यु दुर्घटनापूर्ण रही हो, खून के बहाने वाला कैसे भी खोज कर मार डालता था। मेरा ऐसा इरादा नहीं था, ये तो दुर्घटना से हुआ दोस्त, आप जानते हो, आपने किया है, कैसे भी उनके पास दया नहीं थी। ये मेरा आदर और कर्तव्य है, मुझे आपको मारना ही पड़ेगा। इसलिए इस गहराई से बसी मनोवृत्ति को संभालने के लिए परमेश्वर ने शरण के शहर स्थापित किए थे कि यदि दुर्घटनावश कोई किसी से मर जाए तो वो शरण के शहर में भाग सकता था, और यदि आप शरण के शहर को भाग जाओ तो इससे पहले कि बदला लेने वाला आपको पकड़े और आप शहर की सीमा में प्रवेश कर जाते हैं तो आप बच जाते हो, वो वहां आपका कुछ नहीं कर सकता। और लेवी इन शहरों में आपको शरण देते और बचाते थे और आश्वासन देते थे कि आपको मौका दिया जाएगा, कि आपको निष्पक्ष और स्वतंत्र न्याय दिया जाएगा। जब तक आप शरण के शहर नहीं पहुंचते तब तक आपका निष्पक्ष न्याय नहीं हो सकता था। यही नियम हिंसा और बदला लेने वालों का था, वे वही आपको पकड़ते और मार डालते थे। इसलिए आपको शरण शहर को भाग जाना था, जहां आपको निष्पक्ष न्याय मिलना था। यदि यह सिद्ध हो जाता था कि हादसा दुर्घटनावश नहीं था, आपने इसकी योजना बनाई थी कि आपके अंदर जलन और शत्रुता थी, और ये सिद्ध कर दिया जाए कि यह हादसा क्रोध में किया गया, तब तो आपकी शरण के शहर से छोड़ दिया जाएगा और बदला लेने वाले आपको मौत के घाट उतारेंगे। यदि आप सिद्ध कर पाओ कि जो हुआ वो मात्र दुर्घटना थी और आपका कोई ऐसा कुछ करने का इरादा नहीं था, तब तो आप उस शहर में रह सकते थे और वे आपको छुएंगे भी नहीं। तब आप शरण के शहर में रहोगे, और जब तक आप शरण के शहर में रहते हैं तब तक आपको सुरक्षा दी जाती है। परंतु यदि आप शहर छोड़ दे तो बदला लेने वाले आपको पकड़कर मृत्यु के घाट उतार सकते हैं। आप सुरक्षित रहते हैं जब तक आप शरण शहर की सीमा के अंदर रहते हो। उनका एक और प्रबंध था, क्योंकि मनुष्य को आशा चाहिए, और वो एक ही शहर में रहते हुए अपने आप को बंधक समझने लगेगा और शीघ्र ही निराश हो जाएगा। मैं अपने परिवार से दूर हूं, मैं घर जाना चाहता हूं, आदि आदि, मैं कभी घर वापस नहीं जा पाऊंगा। इसलिए परमेश्वर ने एक और प्रबंध किया था कि ऐसे लोगों को आशा मिले। इस प्रबंध में ऐसा था कि यदि महायाजक मर जाए तो अपराधी स्वतंत्र होकर घर जा सकते थे। परमेश्वर ने ये सब नियम इसलिए दिए कि वो बदला लेने के विरोध में था। बदला लेने की भावना उनकी संस्कृति में ऐसे बस गई थी कि परमेश्वर को निर्दोषों के पक्ष में ऐसे नियम बनाने पड़े। धीरे धीरे ये उनकी संस्कृति में समा गया और प्रथा बन गया। मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर आपका बड़ा दिन मनाने से उत्तेजित या क्रोधित नहीं होता, चाहे आपके पास बड़े दिन का पेड़ हो। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि उसने मुझे यीशु मसीह में बड़ी स्वतंत्रता दी है। और जब हम बड़ा दिन मनाते हैं, हम तामूज, निम्रोद या सुमोरामुस को याद नहीं करते और न मूर्ति पूजकों के ईश्वर को, जिनका पर्व भी वर्ष में इसी समय मनाया जाता है, न हम सैटर्न और न ही सूर्य को याद करते हैं। मैं सोचता हूं यही याद करना उचित है। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया। और जब तक हम ये नहीं जानते कि यीशु कब पैदा हुआ था, वास्तव में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम कौन से दिन उसका जन्मदिन मनाएं। तिथि का अपना कोई महत्व नहीं होता। परंतु परमेश्वर, मैं सोचता हूं कि मेरे पास स्वतंत्रता है कि मैं अपने परिवार के साथ देने का दिन, प्यार बांटने का दिन का पर्व मनाऊं। परंतु मैं इसलिए भी धन्यवाद करता हूं कि मैं स्वतंत्र हूं कि इस छुट्टी के दिन किसी मूर्ति पूजा के विचार को न अपनाऊं। मसीह में आप स्वतंत्र हो। मैं बड़े दिन का पेड़ रखने को या न रखने को स्वतंत्र हूं। और यदि मेरे पास वो हो तो मैं अधर्मी नहीं बन जाता, और न हो तो कोई धर्मी नहीं बनता हूं। परंतु ये सब है तो रीतियां ही जो हमारे परिवार में गहराई से बैठ गई है, और परमेश्वर जानता है कि वे कितनी गहरी है। इसलिए वो नियम देता है कि इन व्यर्थ की रीतियों से उभारा जा सके। अब जहां बड़ा दिन मद पीने का समय है, परमेश्वर उसको सुधारता है और कहता है, और दाकरस से मतवाले ना बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। इफिसियों 5:18। वो हमें हर चीज में सभ्यता सिखाता है। यहां परमेश्वर संस्कृति की आदतों की बात करता है, संशोधन करता है, सीमा के भीतर लाता है, निर्देशों के लिए प्रबंध करता है। तो भी हत्यारे को स्वतंत्र नहीं छोड़ा जा सकता था, परंतु उन्हें एक मनुष्य की गवाही से मृत्यु भी नहीं दी जा सकती थी। गुना स्थापित करने के लिए कम से कम 2 गवाह आवश्यक है, और यदि गुना स्थापित हो जाए तो दोषी से कोई फिरौती नहीं ली जा सकती। दूसरे शब्दों में वो अपने बचाव को खरीद नहीं सकता। इस तरह दोषी को मृत्यु देनी है और देश को भ्रष्टाचार से मुक्त करना है। आज हमारे पास अनेक समाजशास्त्री हैं जो कहते हैं अपराध के विरुद्ध में मृत्यु दंड देना कोई हल नहीं है। मनुष्य को मार डालना एक भयानक बात है। इसलिए हम कहते हैं वास्तव में परमेश्वर के नियम मान्य नहीं है, वो वास्तव में भलाई के नहीं है। हम अपने सामाजिक शास्त्र के अनुसार परमेश्वर के नियमों से अधिक ज्ञान रखते हैं, और हम ऐसे नियम बना सकते हैं जो परमेश्वर के नियमों से बेहतर है। हम आज अपने देश की क्या व्याख्या करेंगे, अपवित्र है या नहीं है? यही तो परमेश्वर ने कहा था